नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। बिल्ट टू लास्ट, जिम कॉलिंस और जेरी आई पोरस की प्रबंधन तथा कॉरपोरेट रणनीति पर केंद्रित पुस्तक है। मूलतः 1994 में प्रकाशित यह पुस्तक स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में हुए लगभग 6 वर्ष के शोध पर आधारित है। लेखक 18 लंबे समय तक प्रभावशाली रही कंपनियों की तुलना उनके प्रमुख प्रतिस्पर्धियों से करते हैं। उनका प्रश्न सीधा है, कुछ संस्थाएं कई नेतृत्व परिवर्तन, बाजार बदलाव और उत्पाद चक्रों के बावजूद टिकाऊ कैसे बनती है? पुस्तक का उत्तर किसी असाधारण संस्थापक, एक सफल उत्पाद या केवल लाभ कमाने की क्षमता में नहीं है। इसके बजाय यह संगठन की आंतरिक बनावट, साझा मूल्यों, दीर्घकालिक उद्देश्य, अनुशासन और नवाचार की आदतों पर ध्यान देती है। कॉलिंस और पोरस का मुख्य तर्क है कि महान संस्थाएं समय बताने वाले व्यक्ति पर निर्भर रहने के बजाय ऐसी घड़ी बनाती हैं जो उसके बाद भी चलती रहे। पुस्तक इसलिए केवल कंपनी चलाने की सलाह नहीं देती, बल्कि ऐसी संस्था गढ़ने का ढांचा प्रस्तुत करती है जो व्यक्तियों से बड़ी और पीढ़ियों तक प्रासंगिक रह सके। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, व्यक्तिगत नायक नहीं संस्थागत घड़ी का निर्माण। पुस्तक की सबसे पहचानी जाने वाली अवधारणा घड़ी बनाना, समय बताना नहीं है। समय बताने का अर्थ है कि कंपनी किसी एक प्रतिभाशाली संस्थापक, करिश्माई मुख्य कार्यकारी या किसी एक निर्णायक विचार पर टिकी हो। ऐसा व्यक्ति असाधारण परिणाम दे सकता है, लेकिन उसके हटते ही संगठन की दिशा कमजोर पड़ सकती है। इसके विपरीत घड़ी बनाने का अर्थ है प्रक्रियाएं, सांस्कृतिक मानदंड, नेतृत्व विकास और निर्णय प्रणालियां बनाना जो लगातार अच्छे निर्णय पैदा करें। लेखक इसीलिए उस धारणा को चुनौती देते हैं कि महान कंपनियों की शुरुआत हमेशा साफ और महान उत्पाद दृष्टि से होती है। कई सफल संस्थाओं का आरंभ प्रयोगों, अनिश्चितता और बदलती दिशा के बीच हुआ। निर्णायक बात यह थी कि वे सीखने और टिके रहने वाली व्यवस्था बना सकें। इस दृष्टि से नेतृत्व का काम स्वयं को अपरिहार्य बनाना नहीं, बल्कि अपनी अनुपस्थिति में भी संस्था की क्षमता बढ़ाना है। उत्तराधिकार, प्रतिभा चयन और संचालन के नियम केवल प्रशासनिक विषय नहीं रह जाते, वे दीर्घजीविता के आधार बनते हैं। यह विचार उन उद्यमियों के लिए उपयोगी है जो कंपनी को अपने व्यक्तित्व का विस्तार मानते हैं। पुस्तक कहती है कि संस्थापक की सबसे स्थायी उपलब्धि वह संगठन है जो संस्थापक के बिना भी अपने उद्देश्य और मानकों के साथ आगे बढ़ सके। दूसरा, मूल विचारधारा में स्थिरता और प्रगति के लिए निरंतर बदलाव। कॉलिंस और पोरस के अनुसार दूरदर्शी कंपनियां दो विरोधी लगने वाली जरूरतों को एक साथ संभालती हैं। वे अपने मूल उद्देश्य और मूल्यों को सुरक्षित रखती हैं, लेकिन अपनी रणनीतियों, उत्पादों, संरचनाओं और काम करने के तरीकों को बदलने के लिए तैयार रहती हैं। मूल विचारधारा का मतलब केवल आकर्षक मिशन वक्तव्य नहीं है, इसमें कंपनी के अस्तित्व का लाभ से परे कारण तथा वे कुछ मूल्य शामिल हैं जिन पर सुविधा के लिए समझौता नहीं किया जाना चाहिए। लाभ आवश्यक है, पर पुस्तक उसे संस्था के अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य नहीं मानती। दूसरी ओर, किसी पुराने तरीके से चिपके रहना भी मूल्यों के प्रति निष्ठा नहीं है। उद्देश्य स्थिर रह सकता है, जबकि उसे पूरा करने की विधियां बदलनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, नवाचार को अपनाना किसी कंपनी के मूल सिद्धांतों का त्याग नहीं, उसके उद्देश्य को नए संदर्भ में जीवित रखने का माध्यम हो सकता है। यह भेद व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण है। जब नेता मूल्यों और प्रथाओं को एक ही चीज मान लेते हैं, तब परिवर्तन को विश्वासघात समझा जाता है। पुस्तक का ढांचा उन्हें अलग करता है। संस्था को यह स्पष्ट करना होता है कि क्या पवित्र है और क्या बदला जा सकता है। इसी स्पष्टता से बदलाव के समय निर्णय तेज, संगत और कम अवसरवादी बनते हैं। तीसरा, बड़े रोएदार दुस्साहसी लक्ष्य प्रगति को दिशा देते हैं। पुस्तक ने बड़े रोएदार दुस्साहसी लक्ष्य की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। इसका आशय ऐसे स्पष्ट और कठिन दीर्घकालिक लक्ष्य से है जो सामान्य वार्षिक योजना से बहुत आगे हो, लोगों की कल्पना को सक्रिय करे और संगठन को अपनी वर्तमान क्षमता से बाहर जाने के लिए बाध्य करे। ऐसा लक्ष्य केवल ऊंची संख्या या प्रचार वाक्य नहीं होता, वह इतना ठोस होना चाहिए कि कर्मचारी समझ सकें कि जीत कैसी दिखेगी और इतना चुनौतीपूर्ण कि उसे पाने के लिए नए कौशल, निवेश और सहयोग की जरूरत पड़े। लेखक के लिए इसका काम भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना नहीं है, इसका काम सामूहिक ऊर्जा और प्राथमिकता पैदा करना है। जब दैनिक काम बिखरा हुआ हो, तब एक दुस्साहसी लक्ष्य अलग विभागों को साझा दिशा देता है। फिर भी पुस्तक इसे जादुई उपाय के रूप में नहीं रखती। लक्ष्य को मूल विचारधारा और वास्तविक संगठनात्मक क्षमता से जुड़ना चाहिए। केवल अवास्तविक घोषणा बिना अनुशासन, संसाधन और प्रगति मापने के तरीके के कर्मचारियों में अविश्वास पैदा कर सकती है। प्रभावी लक्ष्य हासिल होने पर संस्था को फिर नया लक्ष्य चाहिए, क्योंकि ठहराव भी जोखिम है। इस तरह लक्ष्य केवल परिणाम का संकेतक नहीं, सीखने और विस्तार की प्रणाली बनता है। यह अवधारणा अल्पकालिक तिमाही लक्ष्यों के दबाव के विरुद्ध दीर्घकालिक संस्थागत महत्वाकांक्षा का तर्क प्रस्तुत करती है। चौथा, सुदृढ़ संस्कृति में चयन, समाजीकरण और असंगति की सीमाएं। बिल्ट टू लास्ट में दूरदर्शी कंपनियों की संस्कृति को कई बार पंथ जैसी विशेषताओं वाली संस्कृति कहा गया है। इसका अर्थ किसी विचारहीन आज्ञाकारिता की सिफारिश नहीं है। लेखक का आशय ऐसी स्पष्ट, गहरी और व्यापक संस्कृति से है जिसमें संस्था के मूल्यों को केवल दीवार पर नहीं लिखा जाता, बल्कि भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पुरस्कार और दैनिक व्यवहार में उतारा जाता है। ऐसी कंपनियां अपने अनुकूल लोगों को चुनती हैं, नए लोगों को अपनी कार्यपद्धति से परिचित कराती हैं और लगातार संकेत देती हैं कि किस प्रकार का आचरण स्वीकार्य है। मजबूत संस्कृति समन्वय की लागत घटा सकती है, क्योंकि हर छोटे निर्णय के लिए ऊपर से आदेश की जरूरत कम पड़ती है। कर्मचारियों को साझा उद्देश्य के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने का आधार मिलता है। लेकिन इस विचार का जोखिम भी है। यदि मूल्यों की व्याख्या संकीर्ण हो जाए तो असहमति, विविध अनुभव और जरूरी चेतावनियां दब सकती हैं। इसलिए पुस्तक का व्यापक तर्क संस्कृति को जड़ बनाने का नहीं, मूल विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ प्रगति को प्रोत्साहित करने का है। व्यवहार में नेताओं को दो प्रश्न अलग रखने चाहिए। पहला, क्या व्यक्ति साझा मूल्यों का सम्मान करता है? दूसरा, क्या वह मौजूदा तरीकों को बेहतर बनाने के लिए तथ्यपूर्ण चुनौती दे सकता है? टिकाऊ संस्कृति दोनों के बीच संतुलन से बनती है, केवल निष्ठा से नहीं। अंत में तुलनात्मक शोध की उपयोगिता और परिणामों को पढ़ने की सीमा इस पुस्तक की विशिष्टता केवल उसके सिद्धांतों में नहीं, उसकी तुलनात्मक पद्धति में भी है। लेखकों ने 18 प्रतिष्ठित और लंबे समय तक सफल कंपनियों को चुना तथा प्रत्येक की तुलना एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी कंपनी से की। इससे उनका उद्देश्य केवल सफल कंपनियों की प्रेरक कहानियां इकट्ठी करना नहीं था, बल्कि यह देखना था कि समान उद्योग और परिवेश में कौन सी आदतें अलग परिणामों से जुड़ी दिखती हैं। यह ढांचा नेतृत्व साहित्य में उपयोगी है, क्योंकि वह किसी एक कंपनी की असाधारण परिस्थिति को सार्वभौमिक नियम मानने के जोखिम को कुछ हद तक कम करता है। फिर भी पाठक को निष्कर्षों की सीमा समझनी चाहिए। पुस्तक में शामिल कुछ कंपनियों का बाद के दशकों में प्रदर्शन और प्रतिष्ठा कमजोर हुई। इससे यह नहीं सिद्ध होता कि संस्कृति, उद्देश्य या साहसी लक्ष्यों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन यह अवश्य दिखता है कि पुराने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भविष्य की श्रेष्ठता की गारंटी नहीं मिलती। आलोचकों ने यह भी कहा है कि सफल और असफल कंपनियों की तुलना में संयोग, आर्थिक चक्र और चयन पक्षपात की भूमिका कम आंकी जा सकती है। इसलिए पुस्तक को निश्चित सफलता का सूत्र नहीं, बल्कि संस्थागत डिजाइन के लिए विचारपूर्ण परिकल्पनाओं का संग्रह मानना अधिक उचित है। इसके सिद्धांतों को संदर्भ, बाजार संरचना, शासन व्यवस्था और वास्तविक प्रदर्शन संकेतकों के साथ जांच कर लागू करना चाहिए। निष्कर्ष में, बिल्ट टू लास्ट उन संस्थापकों, मुख्य कार्यकारियों, वरिष्ठ प्रबंधकों, बोर्ड सदस्यों और गैर लाभकारी संस्थाओं के नेताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो तात्कालिक वृद्धि से आगे जाकर संस्था की दीर्घकालिक क्षमता पर विचार करना चाहते हैं। मानव संसाधन, संस्कृति, रणनीति और उत्तराधिकार से जुड़े पेशेवरों को भी इसमें एक साझा भाषा मिलती है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह नेताओं को अपने संगठन के बारे में कठिन प्रश्न पूछने पर मजबूर करती है। क्या हमारे घोषित मूल्य वास्तव में भर्ती और पुरस्कार में दिखते हैं? क्या हमारा उद्देश्य लाभ से परे निर्णयों को दिशा देता है? क्या हमारी प्रगति किसी एक नेता पर निर्भर है? और क्या हम स्थिर सिद्धांतों तथा बदलती कार्यप्रणालियों के अंतर को समझते हैं? समान प्रबंधन पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान इसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण और तुलना आधारित शोध में है। यह किसी एक महान नेता की जीवनी या तुरंत लागू होने वाले प्रबंधन नुस्खों तक सीमित नहीं रहती। इसके बजाय यह संगठन को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखती है जिसे जानबूझकर बनाया और लगातार सुधारा जाता है। फिर भी इसे सावधानी से पढ़ना चाहिए। बाद की घटनाओं ने दिखाया कि सूचीबद्ध कंपनियां स्थायी रूप से श्रेष्ठ नहीं रहती और अच्छे सिद्धांत बाहरी परिस्थितियों या खराब शासन से पूर्ण सुरक्षा नहीं देते। इस सीमा को स्वीकार करने पर पुस्तक अधिक उपयोगी बनती है। यह सफलता की गारंटी नहीं, बल्कि उद्देश्य, संस्कृति, अनुशासन और अनुकूलन के बीच संबंध समझने का प्रभावशाली ढांचा है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जिम कॉलिंस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।